ओजस्वितुं तेजस्वितुं ओजस्वितुं तेजस्वितुं प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम अनुशासन की महाक्रांति हो तुम अनुशासन की महाक्रांति हो तुम क्रांति हो तुम महाक्रांति हो तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम सूर्य के समान महाज्योति हो तुम महाज्योति हो तुम महाज्योति हो तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रखर तेज हो तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो बाबा की आस हो श्वासों में प्राण हो अव्यक्त एक आभान हो मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो तुम महावीर हो वज्र के समान हो कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो तुम क्रांति वीर हो तुम कर्म वीर हो महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम अनुशासन की महाक्रांति हो तुम अनुशासन की महाक्रांति हो तुम क्रांति हो तुम महाक्रांति हो तुम ओजस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम
ओम शांति चलो छू ले उस अनंत क्षणों को जो समय के बंधनों में ना बंधे जहाँ विचारों का शोर थम जाए और बस शांति के स्वर ही गूंजे वो कहते अपने भीतर झांको वहाँ प्रेम का सागर बसा है हर सांस में अनहद नाद है हर धड़कन में खुदा बसा है ये संसार है एक खेल तमाशा आना जाना इसमें होता है जुड़ो खुद से प्रेम से मौन से यही सच्चा ध्यान, यही सच्ची राह है। भीतर की यात्रा में उतर जाओ, वहाँ कोई मंजिल कोई राह नहीं, बस स्वयं से मिलन की खुशी है। यही पूर्णता की निशानी है। जागो, चेतना की रोशनी में खो जाओ, जहाँ हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, मुक्ति का द्वार वहीं खुलता है। स्वयं में खो जाओ, स्वयं को पा जाओ। शिष्य ने गुरु से पूछा, मैं आत्म शांति को पाना चाहता हूँ, संतोष को पाना चाहता हूँ, कब से भटक रहा हूँ, कोई मार्ग नहीं मिलता। शास्त्र है, किताबें है, कंठ कर रखे, पर चेतना प्यासी है। गुरु ने कहा, कल सुबह सुबह जब अंधेरा हो, तभी तुम नदी के तट पर आ जाना। वो शिष्य अगले दिन नदी के तट पर पहुंचता है। अंधेरा है, गुरु पहले से ही आ पहुंचा है। गुरु शिष्य से कहते हैं, जाओ नदी के बीच जाओ, नदी से होते हुए। वो शिष्य जाता है, नदी के बीचों बीच जाकर खड़ा रहता है, और गुरु कहता है, बस अनुभव करो। हवा, ठंडी हवा शरीर को स्पर्श कर रही है, और नीचे दोनों पैर पानी में है। पानी का ठंडा वेग उसे आह्लादित कर रहा है, और गुरु कहते हैं, बस इस क्षण में ठहर जाओ, सब कुछ भूल जाओ और इस अनुभव में खो जाओ। और वो शिष्य चुपचाप उस नदी के बीच खड़ा रहता है, आंखें बंद, और अनुभव करता है उस क्षण को, उस पल को। और उसे वो खुशी की अनुभूति होती है जो उसने आज तक नहीं पाई थी। चारों तरफ सन्नाटा और चारों तरफ मौन, केवल पानी का कलकल निनाद करता वह स्वर। और गुरु तब कहते हैं, अब अपने चेतना के भीतर की नदी में डूबो। एक ऐसी ही नदी, एक ऐसा ही झरना हम सबके बीच में बह रहा है, भीतर बह रहा है, अंतस में बह रहे हैं। उस झरने में डुबकी, वही वास्तविक अध्यात्म है। अध्यात्म ज्ञान नहीं, अनुभव है। सूचनाएं नहीं, अनुभूति है। कोरे शब्द नहीं, शास्त्र नहीं, निशब्द अनुभव है। आज की मुरली क्या बनकर आया है बाबा? खुदा दोस्त, फ्रेंड, डिवाइन फ्रेंड। इस मुरली में तीन बहुत शक्तिशाली वाक्य है, बहुत पावरफुल, जो अपने कमरे में, डायरी में, दीवारों पर लिख के रखने जैसे हैं। बहुत काम आएंगे। पहला वाक्य, जो एक से ही जो चाहो वह संबंध निभा सकते हो। दूसरा, और कहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तीसरा, इसमें कोई और मिले यह इच्छा खत्म हो जाती है। सारे संबंध एक से निभा सकते हो, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और कहीं किसी से कुछ मिले ये इच्छा ही खत्म हो गई है। दरकार ही नहीं है किसी और की, और इच्छा भी नहीं है। चलो नेसेसिटी है अभी, पर अब इच्छा ही नहीं है किसी और से कुछ पाने की, क्योंकि किसी से भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भिखारियों के इस जगत में क्या कौन के देगा। तो ये तीन वाक्य याद रखने हैं। पहला, जो चाहे जो संबंध चाहो वो एक से निभा सकते हो। दूसरा, कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और तीसरा, उससे भी पावरफुल, इच्छा भी नहीं है कि किसी और से कुछ मिले। जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। ये एक्सपेक्टेशन ही तो है, ये चाह ही तो है जो दुखी किए हुए है। हम सोचते हैं इससे प्यार मिले, सम्मान मिले, केयर मिले, अटेंशन मिले, सहानुभूति मिले, हॉस्पिटैलिटी मिले, वस्तु मिले, चीजें मिले, पैसा मिले, धन मिले, सम्मान मिले, आवभगत करे, हमारे लिए कुछ अच्छा अच्छा पकाए और हमें खिलाए। हम बीमार हैं तो हमारे पास ही बैठे, एक मिनट भी यहाँ से दूर ना जाए। हम जो करे उसकी सराहना करे, उसके हमारी स्तुति करे, प्रेज करे, एक्नॉलेज करे हमारे कंट्रीब्यूशन को, हमारा नाम ले, हमारा गुणगान गाए, हमारी महिमा गाए, हमारे बारे में अच्छा बोले। कितनी दबी हुई इच्छाएं हैं, और इसके विपरीत जब वो करते हैं तो कितने आहत होते हैं। पर आहत ऐसे होते हैं कि किसको बता भी नहीं सकते, क्योंकि इच्छा भी गुप्त थी और आहत होना भी गुप्त था। मीरा रोए चुपके चुपके, मेरा दर्द न जाने कोई, किसको सुनाऊं अपनी व्यथा जो पीड़ा हुई है। सोचा हमने इतनी सेवाएं की, बहन जी सबके सामने हमारा नाम लेगी, पर सबका नाम लिया हमारा नाम छोड़कर, जबकि हम ही एकमात्र कुमार थे। बाकी तो किसी ने कुछ किया नहीं, जो किया था हमने किया था। इतनी बड़ी सेवा हुई, दिल ऐसे टूटा कि फिर अगले एक महीना दिल के टुकड़े हजार हुए। तो आज की मुरली से सबसे पहली बात, ये तीन महावाक्य याद रखने हैं। इन तीन महावाक्यों को अलग से लिखना है और अपने दिल के कमरे में चिपका के रखने हैं, कि और किसी की आवश्यकता नहीं है और इच्छा भी नहीं है किसी से कुछ मिलेगा, और किसी से कुछ मिलेगा भी नहीं। He who loveth his mother and father more than me is not worthy of me. He who loveth his brother and sister more than me is not worthy of me. जो अपने लौकिक माँ बाप को मुझसे अधिक प्यार करता है, मेरे लायक नहीं है वो। जो अपने लौकिक भाई और बहन को मुझसे अधिक प्यार करता है, वो मेरे लायक ही नहीं है। बाइबल में महावाक्य है, I, thy Lord, thy God, am a jealous God. मैं जो परमात्मा हूं, जो भगवान हूं, बहुत ही ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त अगर तुमने किसी से प्यार किया तो देख लेना, मैं बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूं। आई एम अ जेलस गॉड। बस मेरे पास आओ, मन मना भव मध्याची माम नमस्कुरु। केवल मुझे नमस्कार कर, केवल मेरी शरण में आ। सर्व धर्म परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के, लिव असाइड एवरीथिंग, त्यज अगर मगर, आ जाओ इधर, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं। अहम माधिश्य मध्यश्य, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस। मैं ही प्रकाश हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी भी अंधकार में नहीं भटकेगा। मैं ही एकमात्र प्रकाश हूं। तो सर्व संबंध केवल एक से चिट पेपर है। इस चिट पेपर में केवल एक संबंध लिखेंगे जो आपको सबसे अच्छा लगता है बाबा के साथ। केवल एक संबंध, पिता, बहन, भाई, सबको बांटेंगे। एक 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 ही शब्द लिखेंगे, मदर, फादर, टीचर, खुदा, दोस्त, एनीथिंग, चाचा, मामा, काका, एक ही लिखेंगे बस, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। थियोरी नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, निबंध नहीं लिखेंगे, शब्द लिखेंगे, केवल शब्द। लिख के रुक जाओ, एक शब्द, केवल एक शब्द। काउंसलर है वो, साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, मैजिशियन है, गाइड है, ट्यूटर है, टीचर है, मेंटोर है। जस्ट राइट वन वर्ड जो हमें सबसे अच्छा लगता है। हो सकता है हमें बहुत सारे अच्छे लगते हैं, पर एक ही लिखना है जो अच्छा लगता है। अभी आंखें बंद करो और बैठो और अपनी दिनचर्या को याद करो। सुबह से लेकर रात तक हम क्या क्या करते हैं, अमृत वेला, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या है उसमें उस शिव बाबा को जो संबंध मैंने लिखा, उस संबंध का क्या अनुभव है। नहाते हुए, उठते हुए, जागते हुए, बात करते हुए, सेवा करते हुए, जिस प्रकार की जिसकी सेवा है, अपनी दिनचर्या के एक एक स्टेशन से गुजरो और उसमें परमात्मा जैसे कोई व्यक्ति नहीं परंतु एक प्रेजेंस है, एक उपस्थिति है, उस उपस्थिति का अनुभव करो। आंखें खोल के एक बार फिर से देखेंगे जो लिखा है उसको। और उसको देखते देखते चिंतन करेंगे, क्या ये संबंध मेरे लिए केवल थियरी है या अनुभव। फिर से आंखें बंद और विजुलाइज करो पहाड़ की एक चोटी में इसी संबंध से वो मेरे पास बैठा हुआ है। समुद्र के तट पर हम दोनों बैठे हुए हैं, एक बगीचे में हम दोनों घूम रहे हैं। जीवन की कठिन परिस्थितियों में इसी संबंध से अब वो मेरे साथ है। सुबह अमृत वेला मैं उससे बात कर रही हूं। अब उसे अपने जीवन का कोई एक प्रश्न पूछेंगे, उत्तर बताओ। जब तक नहीं बताओगे मैं जाऊंगी नहीं। आंखें खोलेंगे
तो ये सबसे पहली बात आज की मुरली से सारे संबंध। दूसरा, बाबा ने कहा ये अनुभव करना ही जादूगरी है, जिस डिवाइन मैजिक। तीसरा, दूर से कौन आया है,
तुम या मैं? ये बाबा के फेवरेट प्रश्नों में से एक प्रश्न है, तो ऐसे बाबा के 10 फेवरेट प्रश्न बनाने हैं आज। बाबा का फेवरेट प्रश्न है ये, कौन सा, अधिक दूर से कौन आया है, तुम आए या मैं आए, कौन कहां से आए। वो शुरुआत कहां से करता है हमेशा, बताओ कौन कहां से है? अच्छा, अमेरिका से आए, अच्छा ब्राजील से, बांग्लादेश से, अच्छा बर्मा से, अच्छा ऑस्ट्रेलिया से आया है, अच्छा अब बताओ सबसे दूर से कौन आया है, अच्छा यूके से आए है, अच्छा सबसे दूर से कौन आया है। और फिर बाबा अपनी बात बताता है कि सबसे दूर से कौन आया है, मैं आया हूं। न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक, जहां न सूरज है न चंद्रमा है ना कोई दिया है, उस धाम से तद धामम परमम मम, वो मेरा धाम है, मैं वहां से आता हूं, सुदूर परम धाम से। तो ऐसे बाबा के कितने प्रश्न बनाने हैं, 10 बनाने मतलब ढूंढने हैं, जो वो बना चुका है और जो हमेशा पूछता है, 10 फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ गॉड।
अगला, फॉरेनर्स कौन है? फॉरेवर
भगवान कवि है, साहित्य सम्राट, तुकबंदी, राइमिंग वर्ड्स उसे बहुत आते हैं। आ सकती है तो
माया आ सकती। अगला,
जो भी सेवा कर रहे हो उस सेवा के 2 आधार स्तंभ है, अगर ये 2 आधार स्तंभ हट गए तो सेवा विफल हो जाएगी। पहला आधार एक बाप से अटूट प्यार, उस एक से ही प्यार, उस एक में ही लवलीन, यही रूहानी जादूगर की निशानी है। तो 10 समर्पण सूत्र कौन सुनाएगा? सुनाओ। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक से सर्व संबंध, नहीं आगे पीछे नहीं हो सकते, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, एक का संग, एक से प्यार, एक बल एक भरोसा, एक के साथ सर्व कर्तव्य, एक से रूरियान, एक बल एक भरोसा, एक ही सब कुछ और एक में ही सब कुछ। द चैप्टर ऑफ 1,
एक में सर्वस्व,
सब कुछ उस एक में ही समाया है, जो कुछ चाहिए वो उसमें समाया हुआ है, जो कुछ है वो उसमें समाया हुआ है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। परंतु ये अनुभव बहुत ऊंचा अनुभव है, जिज्ञासा है सब कुछ जानने की, संसार में जो है, एंड अल्टीमेटली ये कंक्लूजन निकलता है कि कहीं कुछ भी नहीं है। दो अर्थ एंड मून वेर गॉन एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी एंड धावट लेफ्ट अलोन एवरी एग्जिस्टेंस वुड एक्सिस्ट इन दी। अंग्रेजी कवियत्री इमिली ब्रॉन्टी की एक कविता है जो कहती है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा संसार का, अर्थ एंड मून एंड सन्स एंड यूनिवर्स वेर गॉन एंड धावट लेफ्ट अलोन, अकेला तू बचेगा हे परमात्मा, सब कुछ तुझ में समाया है, वो सब कुछ रहेगा, क्योंकि तू ही सब कुछ है, तुझ में ही सब कुछ है, तुझसे ही सब कुछ है, तेरे लिए ही सब कुछ है। वी लीव, वी मूव, वी हैव अवर बीइंग इन हिम। ये अनुभव जब है तब सेवा में सफलता होगी, नहीं तो सेवा में सफलता नहीं होगी, सेवा में द्वंद्व होगा, सेवा में मैं मेरा तेरा, सेवा में अहंकार की टक्कर होती है, डिविजन्स होते हैं, अद्वैत राज्य नहीं होता, द्वैत राज्य हो जाता है, एक ही में 5 डिपार्टमेंट्स, एक ही के 5 इंचार्ज, टुकड़े टुकड़ों में विभाजित, मैं मेरा टकराता है, उसमें सफलता नहीं होगी। उसमें प्रचार होगा मात्र, प्रचार तो बहुत हो सकता है, प्रोपोगेंडा हो सकता है, सेवा नहीं। सोशल सर्विस हो सकती है, सेवा नहीं। अनमैरिड जीवन के कुछ अनमैरिड जीवन की कुछ समस्याएं हैं, अनमैरिड लाइफ की समस्याएं, उसमें एडिशन शब्द एडजेक्टिव आध्यात्मिक अनमैरिड लाइफ, उसमें और एक एडिशन करो बी के आध्यात्मिक अनमैरिड लाइफ। समस्या क्या है? समस्या है भीतरी खालीपन, ये एक ही समस्या है, एम्प्टीनेस, वॉइड, और ये
खालीपन को किससे भरता है? व्यक्ति सेवा से, सोशल सर्विस से, भोजन से, घूमने फिरने से। ये सारा जो है सोशल सर्विस, संसार में भी जो स्पिरिचुअल अनमैरिड है वो भी किससे भरता है? सोशल सर्विस से। अपने आप को इतना बिजी कर देते हैं सुबह से लेकर रात तक, ट्री प्लांटेशन करो, ये समाज, वो ये संस्था, वो संस्था। एक्चुअली दैट्स एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, एक असफल प्रयास है वो भीतर के खालीपन को भरने का। हमें लग रहा है ये व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक बिजी रहता है, कितना सेवा करता है, पर वो सेवा नहीं है। वो सेवा नहीं करे तो अंदर का खालीपन उसे मार देगा। वो उस खालीपन को भरने का एक असफल प्रयास है, सोशल सर्विस या फिर बीके है तो सर्विस। और ये जो एम्प्टीनेस है, ये जो वॉइड है, ये जो अलोननेस है, ये जो अकेलापन है, इस अकेलापन को भरना चाहता है। किससे भरेगा? बाह्य मुक्ता चाहिए, व्यक्ति चाहिए, लोग चाहिए, सेवा चाहिए, भोजन चाहिए, कुछ तो चाहिए जिसमें अंदर जाने की जरूरत ही ना पड़े। अंदर भय है, अंदर अंधकार है, अंदर राक्षस है जो खा जाते हैं, निगल जाते हैं, भयावह है। सुनसान काली रातें भयभीत करती पलकों, निःशब्द फैली छाया। सेवा तभी सफल हो सकती है अगर वो सेवा इज राइजिंग फ्रॉम पैशन, एक जुनून से निकल रही है वो सेवा, एक उत्कट इच्छा है इस विश्व का कल्याण करो, सारे संसार को दुखों से छुड़ाऊ। अगर ये भाव नहीं है शुरुआत से ही, तो वो सेवा केवल प्रोपोगंडा है, सोशल सर्विस है, एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फिल द वॉइड विद इन, एक असफल प्रयास है जो भीतर का खालीपन, अकेलापन भर रहे हम बस। किसी ने कहा कि ये एक दिन भट्टी करनी है, योग में रहना है, पूरा दिन कमरे में एकांत में मौन में रहो, बहुत बेचैनी होती है, नहीं रह पाते, आंख बंद करके ही रह के दिखाओ 2 घंटा बिना हिले डुले, ऐसा लगता है कुछ करूं, कुछ नहीं तो कुछ तो करूं। ट्रेन में आपने देखा होगा जब सफर करते हैं तो जो आसपास के लोग बैठे हुए थे क्या करते, नीचे की बैग निकालते, उसके चेन खोल के देखते, फिर वो अंदर रखते, फिर ऊपर की बैग निकालते, फिर इधर की बैग निकालते, फिर वहां की बैग निकालते, फिर जो भी आता है, पेप्सी वाला आता है तो पेप्सी खरीदते हैं, पानी वाला आता है तो पानी लेते हैं, दूध वाला आता है तो छाछ लेते हैं, उससे चाय पीते हैं, हर स्टेशन पर देखते हैं, बाहर उतर के देखते हैं, नए लोग जो होते हैं उनसे मिलने की कोशिश करते हैं और उनको डिस्कशन में खींचने की कोशिश करते हैं, और बताओ आप कहाँ जा रहे हो, अच्छा फिर वहां क्या है, कौन सा बिजनेस करते हो। एक पल भी मौन का नहीं है, अंदर इतना खालीपन है और खालीपन इतना गहरा है कि उसको इन सब बातों से भर रहा है। हमको दूर से लग रहा है कितनी सेवाएं कर रहे हैं, सेवाएं है ही नहीं, कुछ और ही हो रहा है, बेचैनी है, ब्रह्मचर्य अपना लिया है, पर ब्रह्मचर्य का जब तक पालन पोषण नहीं होगा, वो ब्रह्मचर्य दमन है, सपरेशन है, वो काम वासना अंदर छिपी रहती है और विस्फोट की तरह, ज्वालामुखी की तरह समय के चलते, समय आते ही, अनुचित समय में अवसर मिलते ही बाहर निकलेगी। इसलिए सेवा किससे निकले? प्यार से, प्यार है इसलिए। सेवा किससे? उस जोश से, उस जुनून से, उस ऑब्सेशन से, उस पैशन से। इस यज्ञ से प्यार है इसलिए बाइबल में दिखाया, जीसस क्राइस्ट एक चर्च सिनेगॉग यहूदियों के मंदिर में प्रवेश करता है और देखता है वहां लोग क्या कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, क्या क्या खेल रहे हैं, भगवान के मंदिर में चाबुक निकालता है और एक एक को पटक मारने लगता है और सबको बाहर निकालता है। यू हैव मेड द हाउस ऑफ गॉड इन टू अ डेन ऑफ थीव्स। और बाइबल में एक वाक्य है, बहुत शक्तिशाली वाक्य, द लव फॉर दिस हाउस ऑफ गॉड बर्न्स इन मी लाइक अ फायर। परमात्मा के इस घर के लिए मेरे अंदर जो प्यार है वो एक अग्नि है, आग की तरह है। वैसे ही आग की तरह प्यार इस यज्ञ के प्रति हो, परमात्मा के प्रति हो, वो याग आग हो, आग वो है सेवा। और सेवा का दूसरा आधार स्तंभ क्या है? ज्ञान की हर पॉइंट को अनुभव के रीति से अनुभव करना। जैसे साक्षी भाव मुरली में आया है, जैसे ड्रामा की पॉइंट, जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है, ड्रामा कल्याणकारी, युग कल्याणकारी, बाप कल्याणकारी, मेरा कल्याण हो नहीं सकता, सब में कल्याण ही दिखाई दे। जो कुछ हुआ कोई पश्चाताप नहीं, कोई रिपेंटेंस नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसने ऐसा क्यों कर दिया, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। इस संसार में हमारा कोई ना टाइम वेस्ट कर सकता है ना हो रहा है, जो हुआ है हमारे ही कर्मों का फल है। कर्म प्रधान है संसार, वो भगवान इसमें कुछ नहीं करता है। तुमको यदि बीमारी थी और बीमारी से बचे, वो भी तुम्हारे कर्म का फल है। तुम अगर बीमार थे और मर गए, मरने के बाद ये भी मत पूछना बाबा तूने मुझे क्यों मार दिया, मुझे तो सेवा करनी थी, तुम्हें मरना ही था। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल व चाखा। तो आज का कोई भी एक ज्ञान का पॉइंट लेना है और उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे उसको लिखना है, कोई भी एक ज्ञान का पॉइंट, और उस एक ही पॉइंट को प्रैक्टिकल में कैसे लाया जाए उसकी विधि लिखनी है। और विधि भी बहुत नहीं, छोटी सी विधि लिखनी है। जैसे पॉइंट ले लिया, साक्षी हो जाओ। कैसे साक्षी हो जाए, इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है। कल्याणकारी, रहम दिल बनो। कैसे रहम दिल बनो, सामने वाला हमारा फायदा उठा रहा है फिर भी मीठा बोलो। कैसे मीठा बोले, जल सम बचन बोले रघुनाथा। लक्ष्मण का वाणी में तेज है, तीव्रता है। वो परशुराम आते हैं धनुष तोड़ने के बाद, तो इतना सुनाता है लक्ष्मण रामायण में है। उसके बाद फिर श्री राम कहते हैं जल सम वचन भूले रघुनाथा, उसके वचन शीतल है। एक भाई आग लगाता है और दूसरा भाई पानी डालता है, दोनों मिलके षड्यंत्र कर रहे हो। तो ये दो सपोर्ट है, ज्ञान की पॉइंट को अनुभव के रूप में अनुभव करना, और दूसरा बाप ही सब कुछ है सेवा में। अगर ये दो सेवा, ये दो बातें नहीं है तो वो सेवा केवल प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, सामाजिक समाज सेवा जैसा है, दिखावा हो सकता है, उसमें आडंबर हो सकता है, बहुत आडंबर होगा उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, सात प्रकार की अथॉरिटीज इस मुरली में सुनाई है, साइंस की, साधन की, ये सब लौकिक है, हम परमात्मा की कह रहे हैं। सबसे पहली अथॉरिटी तो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी ही मिल गया। एक पादरी चर्च में जाता है, जब भी नए चर्च में जाता है वहां के चर्च की घंटियां बजती है, उसका स्वागत होता है। एक गांव में जाता है, वहां के चर्च का छोटा है और कोई भी घंटियां नहीं बजी, वो चर्च के पादरी से कहता है, बड़ा पादरी बिशप, कि मेरे स्वागत में हर जगह घंटियां बजती है, इस चर्च में, इस गांव में मैं आया, तुमने घंटियां क्यों नहीं बजाई मेरे स्वागत में। चर्च छोटा गांव है, छोटे गांव का, छोटे चर्च का छोटा पादरी, उसे एक आदत है, जब भी वाक्य को चालू करो एक तकिया का लाम। इसके हजार कारण है, वो क्या कहता है, इसके हजार कारण है। आज भी वो कहता है इसके हजार कारण है, और पहला कारण तो यह है हमारे पास घंटियां ही नहीं है। पादरी कहता है बस करो, अब बाकी 999 कारण सुनने का कोई मतलब नहीं है, ये एक कारण ही काफी है। तो सबसे पहली अथॉरिटी है बाप ही तुम्हें मिला है, और कौन सी अथॉरिटी चाहिए। ही इज द अथॉरिटी ऑफ अथॉरिटीज, सर्वसत्ताओं का की सत्ता है वो, सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोपरि है, द सुप्रीम, उससे ऊपर और क्या चाहिए तुमको, सत्ताधीश है। दूसरी ज्ञान की, तीसरी धर्म की, चौथी ब्रह्मा कि तुम कौन हो, मुख्य वंशावली। अगला कर्म की अथॉरिटी, जिससे तुम्हारा प्रैक्टिकल जीवन श्रेष्ठ हुआ। अगला कर्म की अथॉरिटी से जो भविष्य अखंड राज्य होगा, उस अधिकार की अथॉरिटी। और लास्ट भक्तों की अथॉरिटी, ऐसे सात अथॉरिटीज तुम्हारी है। अगली सेवा की बात कही, तुमने जो भी सेवा की, दिल्ली का जो सेवा हुई उसके विषय में बाबा महिमा कर रहे, बच्चों की प्यासों की प्यास बुझी, दुखियों को पैगाम मिला, वो सब। और तुमने क्या क्या लाया, किसी ने नेकलेस लाए, माला लाए, कंगन लाए, अंगूठी लाई, पर अब करना क्या है, बच्चों ने कहा पॉलिश, बाबा ने कहा पॉलिश ऑलरेडी हो रही है मधुबन में, अब उनको शोकेस में रखो विश्व के, ताकि ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा सहित प्रत्यक्ष हो। ये 81 की मुरली है, कहाँ चली है, मेडिटेशन हॉल बना था क्या, 72 में बन चुका, 73 6 में बन चुका, मेडिटेशन हॉल में चल रही वाली ये मुरली है। तो बाबा ने क्या कहा लास्ट में, तुम हो ज्ञान रतन, अगर एक एक की मैं महिमा सुनाऊं कितनी रात है, अनेक रात है, क्या मैं तुम्हारी महिमा करूं, एक एक की महिमा गाओ तो रातें बीत जाए, तुम एक एक रत्न हो। तो आज की मुरली से होमवर्क सबसे पहला बताया 10 प्रश्न जो बाबा के फेवरेट प्रश्न है। दूसरा बताया ज्ञान की वो पॉइंट, कोई एक पॉइंट ले लो और उसका विस्तार करो थोड़ा सा, कोई भी एक पॉइंट, जैसे बाप है सदगति दाता, तो क्यों सदगति दाता है, कैसे सदगति दाता है, वो सारे प्रश्न उसमें लगा, व्हाई व्हेन वेयर व्हाट हाउ कैसे, वो सारा, वो है दूसरा होमवर्क। और तीसरा जो होमवर्क है, हाँ, अथॉरिटी की तो लिस्ट बाबा ने मुरली में कहा है निकालो, निकालना है तो निकाल सकते हो, और कौन कौन सी अथॉरिटी है, पर ये जो संबंध वाला है उसके विषय में कि कोई एक संबंध ले लो आज और उस संबंध का सारे दिन भर में क्या करना है, अनुभव करते रहना है, उस एक ही संबंध का, उसके बारे में सोचते रहो, उसके बारे में फील करो उसको, उस संबंध को डीपली। और क्योंकि बाकी जो भी संबंध है संसार में उसमें अपूर्णता है, ये एक ही संबंध है जिसमें क्या है, पूर्णता है, तो उस पूर्णता का अनुभव करना। ट्रॉफी है, कौन है, रामचंद्र।
बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञान रत्नों से खेलो, लेकिन खेलने कैसे, खेलने के लिए वो अवस्था होनी चाहिए, और भाई जी ने कुछ ज्ञान रत्नों को हमारे लायक बनाया, कुछ हमारी अवस्था को ऊपर उठाया, दोनों का तालमेल ऐसा बनाया जो मुरलियाँ पढ़ते पढ़ते अथाह खुशी रहने लगी, व्यर्थ खत्म ही हो गया, हम कहाँ थे कहाँ आ गए। अव्यक्त मुरलियाँ लाकर, जैसे भाई जी हमेशा बताते हैं, मैंने भी लाकर रखी थी, लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं हुई कभी, एक मुरली पढ़े फिर रुक जाते थे, फिर रुके, और पढ़ते हुए भी पता नहीं चलता था क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन अब मुरली ऐसे धारण हो जाती है, जो अथाह खुशी रहती है कि सारा क्रेडिट भाई जी को जाता है। भाई जी ऐसे गोताखोर हैं, ज्ञान की गहराई में जाते हैं, जा जाकर रतन खोज के लाते हैं और रतन हमें बांटते हैं। बाबा ने रतन दिए हैं, लेकिन उन रत्नों से हम खेल ही नहीं पाते थे, लेकिन भाई जी ने उन रत्नों को ऐसा पॉलिश किया हमारे लिए कि वो रतन इतने सहज हो गए हैं, जो दिन रात खेलते खेलते रहते हैं उनसे। कभी कभी संकल्प आता है, बाबा ने ब्रह्मा का रथ लिया, फिर दादी का रथ लिया, तीसरा रथ लेना होता तो कौन सा रथ लेते, संकल्प चलता है भाई जी का रथ लेते नहीं, फिर ऐसा लगता है भाई जी को तो उसकी भी जरूरत नहीं नहीं फिर ऐसा लगता है भाई जी को आवश्यकता ही नहीं है कि बाबा तन में आए, नहीं नहीं आप भाई जी को उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, भाई जी इतने एडवांस हैं कि यहाँ बैठे बैठे बाबा ऊपर से इनसे कनेक्शन जोड़ रहे हैं कि अब ये करो अब ये करो अब ये करो, बाबा को अंदर आने की जो वहीं बैठे बैठे बाबा अपना काम कर रहे हैं, और भाई जी की कॉन्शियस इतनी हाई है, ये सच बात है, भाई जी की कॉन्शियस बहुत देखी है, इतनी हाई है कैसे बाबा के बोल को कैच कर लेते हैं, कैसे बाबा के संकल्पों को कैच करके, हाँ कैसे संकल्पों को कैच करते हैं, हाँ कैसे कैच करते हैं, और कैसे वो कोई भी भाई जी की क्लास नहीं छोड़ते हम, कैसे कैच करते हैं। APKG वेट था मेरा, भाई जी की क्लासेस सुनते सुनते, दुनिया में तो कहते थे इतना भी नहीं खाओ, भाई जी की क्लासेस सुनते सुनते 55 kg, और सब पूछते हैं कैसे वेट गेन हुआ, और मैं एक ही बात कहती हूँ परमात्मा ने करवाया, किसी को विश्वास नहीं होता कि परमात्मा कैसे वेट कम करा सकता है। भाई जी ने खाना सिखाया, भोजन कैसे, भोजन को कैसे खाया जाए, किस लिए बना है, बहुत कुछ सीखा भाई जी से, भाई जी का बहुत आभार बहुत धन्यवाद, अथा खुशी देने के लिए अथा प्यार देने के लिए सदा आभारी रहेंगे। ज्योति नाम है शरीर का, श्री गंगानगर से हैं, श्री गंगानगर जिले से, स्पेशल आपको सुनने के लिए भाई जी आए, पांडव भवन होटल में रुके हैं, लेकिन सुबह शाम यहीं रहते हैं कि भाई जी की क्लास करेंगे, ठहरे हैं क्योंकि यहाँ पर अकोमोडेशन की थोड़ी दिक्कत रहती है।
तो अव्यक्त मुरली पढ़ने का एक फायदा है वेट लॉस, नई पॉइंट बताइए आप और किसका है उसको बताएंगे, आइए स्टैंड चाहिए उसका कम होगा, एक समय आएगा कि प्रकृति अपने आपके वेट को स्टेबल कर देगी।
जिसका कम है वो अगर कम हो रहा है और मतलब कुछ तो गलत कर रहे हो, जिसका कम है और कम हो रहा है मतलब गलत कर रहे हो। प्रकृति ऑटोमेटिकली उस वेट पर लेके आएगी जो हमारा ट्रू वेट है। अभी हमें जो अभ्यास है वो है फॉल्स वेट है, सूडो वेट है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। एक्चुअली जी, फर्स्ट टाइम आई हूँ। काफ़ी सालों से मैं ब्रह्म कुमारी फॉलो करती हूँ। टीवी में जब शिवानी दीदी का आता था तो 10-12 साल हो गए। ज्ञान में आए हुए मुझे 2 साल हुए, और फिर उसके बाद जो चेंज हुआ वो तो मेरे घर वाले ही बोल पाएंगे। मैंने मुझे अपनी कमी कमजोरियाँ ज़्यादा दिखती हैं ज्ञान में आने के बाद, और लोगों को लगता है कि शायद कुछ बदल रहा है। और इसका प्रभाव मेरे घर वालों पे भी पड़ा है, जो मुझे थोड़ा दिख रहा है वो अच्छा लगा। एक्चुअली मैं सोच के कुछ और आई थी, पर बोलने के टाइम पे वो बातें बोल नहीं पा रही हूँ। पता नहीं, थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ क्योंकि भाई जी के पास बैठ के इस तरह से बोलना तो आप सब समझ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और मेरी छोटी सी बेटी है जो कि ऐसा उसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि वो एक दिन के संकल्प से वो सारा कुछ छोड़ के वो ज्ञान में, मैं जब ज्ञान में आई उसके बाद वो, हाँ क्योंकि हम बंगालीज है तो हमारे थोड़े खान पान भी अलग होते थे। तो जी तो हाँ जी, मून सिन्हा रॉय, तो ये मेरी बेटी है न्यूली रॉय। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बस बोलना चाहूँगी। मैं तो जो सोच के आई थी कुछ बोल नहीं पाई, नेक्स्ट टाइम शायद बोलूँ। तो ये मेरी बेटी है, ये 7 साल की उम्र में ही एक दिन के संकल्प से सब कुछ छोड़ के अभी ज्ञान में चल रही है, वो भी क्लासेस करती है। तो ये इसका प्रभाव, जो कि मैं खुद के ऊपर शायद बोल दी एक्साइटमेंट में, इसका प्रभाव मेरे घर पे पड़ रहा है। सबको लग रहा है कि इतनी छोटी सी बच्ची कैसे एक दिन के संकल्प में सारी नॉनवेज छोड़ चुकी है। बस बोली थी मुझे आज से मैं सब छोड़ रही हूँ, आप चाहे तो आप कल से खा सकते हैं। तो हम दोनों उसी दिन से सब कुछ छोड़ चुके हैं, जबकि मुझे 2 टाइम ही नहीं होता था तो मैं खा नहीं पाती थी। ऐसा था हम लोगों का, आप लोग समझ सकते हैं कि बंगालीज के घर पे कैसे हम लोग का खान पान हुआ करता था। हाँ, पर वो अभी 2 साल हो गए मुझे तो हम दोनों को, तो ऐसा है।
मुझे लगता था कि मतलब किसी के बच्चे को हम लोग खाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, किसी को मार के खाते हैं इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था।
क्या नाम है आपका?
न्यूली।
न्यूली 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 बॉर्न। कौन सी क्लास में हो आप?
3।
तो ज्ञान में चलते हो आप? क्यों क्यों चलते हो?
मम्मी है इसलिए।
मम्मी की वजह से? आपका अपना क्या है? तो आपको ज्ञान में कौन सी बात अच्छी लगती है?
सब कुछ।
कुछ एक बात बताओ।
नहीं ऐसे तो नहीं बोलती। बोल।
मधुबन पहली बार आए हो? अच्छा लगा आपको?
बहुत अच्छा।
क्या अच्छा लगा?
यहाँ पे सब कोई बहुत अच्छे, मुझे वही अच्छा लगा।
थोड़ा सा गा।
उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा, मरुभूमि बनी जीवन में, हरियाली बनकर छाई, मुरझाए से इस मन पर, खुशहाली बनकर छाई, खुशहाली बन कर छाई। तुलना करूं
मैं, वर्डिंग्स मुझे याद नहीं आ रही, सॉरी। ओम शांति।
ओम शांति।
आपने भी होमवर्क किया क्या?
वो एक्चुअली जो मेरा जुलाई का वर्क था मैं की थी, इसमें जो
अच्छा, आधा आधा किया तो आधी ट्रॉफी इनकी है फिर तो। आपको पोएम आती है क्या?
वो गाना ही गाती
है। गाना गाती है। बंगाली पोएम आती है क्या? कुछ तो बंगाली का एक शब्द तो गा के दिखाओ, हम कुछ तो गा के दिखाओ बंगाली सॉन्ग। निखिलेश भाई कोई बंगाली सॉन्ग फेमस वाला?
যদি তোর জো শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি কেউ কথা না কয় ও রে ও ভাগা কেউ কথা না কয়, যদি সবাই দেখে মুখ ফিরায় কেউ করে ভয়, ও রে ও রে ও ভাগা কেউ কথা না কয়, তবে সবার কানে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी, ओजस्वि तुम तेजस्वि तुम राजयोग के तपस्वि तुम, ओजस्वि तुम तेजस्वि तुम राजयोग के तपस्वि तुम, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झनकार तुम अंगार तुम, ओ योगी तुम महायोगी तुम, ओ आंधी में खामोशी तुम, नव सृष्टि के रचनाकार क्रांति वीर तुम सखा वीर तुम महावीर तुम शक्ति वीर तुम महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम अनुशासन के महानायक तुम सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी सदा विजय वरदानी इतिहास की अमर कहानी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओ राजयोग के तपस्वी तुम सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिवशक्ति योगेश्वरी तुम शिवशक्ति योगेश्वरी तुम शिवशक्ति योगेश्वरी तुम शिवशक्ति योगेश्वरी।